अस्सलामु अलैकुम। आज पीर है, नवंबर की 21 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि आर्मी चीफ की तकरीरी का तरीक़ाकार का आगाज हो गया है और इस ज़िम्न में वजारत दिफा से एक समरी आइंदा 1 से 2 रोज में वजीर आजम हाउस भिजवा दी जाएगी। वजीर दिफा ने पीर को वजीर आजम शाहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि 25 नवंबर तक आर्मी चीफ की तकरीरी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने फौज के नए सरबराह के लिए वजीर आजम हाउस को समरी के मौसूल होने की खबरों की तर्दीद की और कहा कि मीडिया में जो इस वक्त चल रहा है वो दुरुस्त नहीं है। वजीर दिफा के मुताबिक आर्मी चीफ की तकरीरी से मुतालिक हुकूमत पर कोई दबाव नहीं है और इस ज़िम्न में इत्तेहादियों के साथ भी हर सतह पर तबादला ख्याल हो रहा है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आर्मी चीफ की तकरीरी के अमल पर कोई डेडलॉक नहीं है, समरी आएगी तो उसमें शामिल नामों पर बहस होगी। मिस्र के शहर शर्मुशेख में मौसमियाती तब्दीली पर कॉन्फ्रेंस में तारीखी माहदे की मंजूरी दी गई है, जिसके मुताबिक वो गरीब ममालिक जिन्हें अमीर मुल्कों की जानिब से कार्बन के अखराज के बाइस आलूदगी से मौसमियाती शिद्दत का सामना है, उनको मुआवजा दिया जाएगा। ये उन गरीब मुल्कों के लिए बड़ा फैसला करार दिया जा रहा है जो एक अरसे से नकद इमदाद का मुतालबा करते आए हैं, जिसे ज़र तलाफी का इख्ताम भी करार दिया जाता है। मौसमियाती तब्दीली पर सरबराही कॉन्फ्रेंस खिताब करते हुए COP27 के सदर और मिस्र के वजीर खारजा ने कहा कि आज यहाँ शर्मुशेख में हमने मौसमियाती तब्दीली के तहत होने वाले नुकसान और उस पर काबू पाने के लिए फंड कायम किया है, जिसके लिए अरसे से तैयारी की जा रही थी। 2 हफ्तों पर मुहित सरबराही इजलास को जुमे के रोज खत्म होना था, लेकिन उसका दौरानिया बढ़ाना पड़ा क्योंकि तकरीबन 200 ममालिक के मुजाकरातकार अहम मसाइल पर इख्तलाफ रखते थे। मौसमियाती तब्दीली से नुकसान पर काबू पाने के लिए ये फंड तरक्की याफ्ता रियासतों और बैन अलावी मालियाती इदारों की तरफ से कायम किया जाता है ताकि उन गरीब ममालिक पर मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए मदद फराहम की जाए जिन पर ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदारी कम है। मुतादिद नुमाइंदे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आइंदा साल दुबई में मुनाकिद होने वाली COP28 कॉन्फ्रेंस के हवाले से कार्बन गैसों के अखराज को कम करने के लिए अभी काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। तारीखी माहदे पर होने वाले इत्तेफाक राय को पाकिस्तान जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए एक सिफारती कामयाबी करार दिया जा रहा है जो एक अरसे से दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ से ग्रीन हाउस कार्बन के अखराज के बाइस होने वाली मौसमियाती तब्दीली की वजह से अपने ममालिक में कुदरती आफात के नुकसान के तलाफी के लिए आलमी सतह पर एक फंड का मुतालबा करते आ रहे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम शाहबाज शरीफ ने तरक्की पज़ीर ममालिक में मौसमियाती तब्दीली की वजह से होने वाले नुकसान और तबाही की तलाफी के लिए फंड के क्याम का खैर मकदम करते हुए इसे माहौलियाती इंसाफ की जानिब पहला कदम करार दिया है। मुबस्सरीन इस फंड के क्याम को उन गरीब मुल्कों के लिए बड़ी पेशरफ्त करार दे रहे हैं जो एक अरसे से माली मुआवनत का मुतालबा करते आए हैं, जिसे ज़र तलाफी का इख्ताम भी करार दिया जाता है। पाकिस्तान की कौमी टीम ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उसके तैयार किए हुए फुटबॉल इन मुकाबलों में इस्तेमाल होते हैं और पहली बार पाकिस्तान के हज़ारों फौजी कतर में जारी मुकाबले की हिफाजत पर मामूर हैं। इस मेगा इवेंट का आगाज इतवार को छोटी खलीजी रियासत के दारुलहुकूमत दोहा में हुआ, जिसमें तकरीबन 1 माह तक जारी रहने वाले मुकाबले के दौरान 12 लाख से ज़ायद अफराद की मेज़बानी की तवक्को है। ये इवेंट 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने के सिलसिले में تعاون کرنے والے ملکوں میں سر فہرست ہے۔ برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، اردن، کویت، فلسطینی علاقے، پولینڈ، سعودی عرب، اسپین، ترکی اور امریکہ سیکیورٹی مشن کے معاونوں میں شامل ہیں۔ پاکستانی دستے میں فوج، فضائیہ اور بحریہ سے مختلف عہدوں کے 4,000 سے زائد فوجی شامل ہیں۔ پاکستان مشرق وسطی کے ملک میں ورلڈ کپ کے اسٹیڈیم اور ہوٹلوں کو محفوظ بنانے میں سب سے بڑا معاون ہے۔ چمن میں پاکستان اور افغانستان کی اسپن بولدک سرحدی کراسنگ پوائنٹ کو آج دوبارہ کھول دیا گیا۔ چمن اسپن بولدک میں طالبان کی سرحدی افواج اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے بعد سرحد کو گزشتہ ہفتے بند کر دیا گیا تھا۔ جھڑپوں میں دونوں طرف سے جانی نقصان ہوا تھا۔ طالبان کے قندھار میں صوبائی گورنر کے دفتر کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرحد کو بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے پاکستانی میڈیا نے رپورٹ کیا تھا کہ پاکستانی سرحدی فورسز نے طالبان کے اس سیکیورٹی عملے کو سپرد کرنے کا مطالبہ کیا تھا جنہوں نے پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی اور ان کو ہلاک کیا۔ چمن کے لیے پاکستانی کمشنر عبدالحمید زہری نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان نے اس یقین دہانی کے بعد سرحد کو دوبارہ کھولنے پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ طالبان حکومت ذمہ داروں کو جلد گرفتار کر کے سخت سزا دے گی۔ 13 نومبر کو چمن بارڈر گیٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں ایک پاکستانی سیکیورٹی اہلکار موت کا شکار ہو گیا تھا اور 2 زخمی ہوئے تھے۔ مقامی میڈیا نے اطلاع دی ہے کہ طالبان اور پاکستانی سرحدی فورسز کے درمیان ضلع ڈنڈے پٹھان سرحدی کراسنگ پوائنٹ پر گزشتہ 3 دنوں سے جھڑپیں جاری ہیں۔ طالبان اور پاکستان نے ابھی تک ان جھڑپوں پر سرکاری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے۔ ڈنڈے پٹھان بارڈر کراسنگ پوائنٹ افغان کوئلے کی پاکستان کو برآمدات کا ایک اہم راستہ ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی سابق سربراہ پروین رحمان کے قتل کیس میں گرفتار 5 ملزمان کی سزاؤں کے خلاف اپیلیں منظور کرتے ہوئے ان کی سزائیں کل عدم قرار دے دی ہیں۔ عدالت کا کہنا ہے کہ سرکار ان ملزمان کے خلاف قتل میں ملوث ہونے کے شواہد پیش کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ملزمان نے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے ملنے والی سزا کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ پیر کو سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انسداد دہشت گردی کی عدالت سے سنائی جانے والی ان کی سزاؤں کو کل عدم قرار دے دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ اگر ملزمان دیگر کیسز سے مطلوب نہیں تو انہیں رہا کر دیا جائے۔ انڈونیشیا کے مرکزی جزیرے جاوا میں پیر کو زلزلہ آیا جس کے نتیجے میں 50 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ زلزلے سے درجنوں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق 5.6 شدت کے زلزلے کا مرکز سیانجور میں تھا۔ دارالحکومت جکارتا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جو تقریباً 70 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں کچھ بلند و بالا عمارتوں کو خالی کرا لیا گیا۔ امریکہ کے نائب صدر کاملا ہیرس نے ہفتے کے روز بینکاک میں ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن سمٹ کے موقع پر چینی صدر شی جن پنگ سے مختصر ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اہلکار نے کہا کہ نائب صدر نے ایک اہم پیغام کی جانب توجہ دلائی جس پر صدر بائیڈن نے 14 نومبر کو صدر شی کے ساتھ ملاقات میں زور دیا تھا کہ ہمیں اپنے ملکوں کے درمیان مسابقت کو ذمہ داری کے ساتھ منظم کرنے کے لیے رابطوں کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ پیغام منگل کو فلپائنی جزیرے پالوان میں ان کے دورے کے خلاف دیکھا جا سکتا ہے جسے بیجنگ ممکنہ طور پر ایک سرزنش کے طور پر لے گا۔ جنوبی بحیرہ چین میں پلوان جزائر کا سلسلہ اسپراٹلی جزائر سے صرف 330 کلومیٹر مشرق میں ہے جن پر چین مکمل طور پر اور برونائی، ملائیشیا، فلپائن، تائیوان اور ویتنام جزوی طور پر دعوے کرتے ہیں۔ ہیرس پلوان کا دورہ کرنے والی اعلی ترین امریکی اہلکار ہیں۔ नायब सदर ने आज पीर को फिलिपाइन के सदर को बताया कि अमरीका की फिलिपाइन के साथ मजबूत वाबस्तगी है, जिसका मकसद चीन का मुकाबला करना और उस जुनूब मशरक़ी एशियाई मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की वजह से मुनक़ता होने वाले ताल्लुकात की तामीर नौ करना है। सदर फर्डिनेंड मार्कोस के जून में इख्तदार संभालने के बाद से कामला हैरिस मैनीला का दौरा करने वाली आला तरीन अमरीकी अहलकार हैं। शिमाली इराक में ईरानी कुर्द ऑपोजिशन ग्रुप के ठिकानों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इतवार की रात देर गए निशाना बनाया। इराक में जिलावतन कुर्द ईरानी ग्रुप डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ईरानी कुर्दिस्तान ने एक बयान में कहा है कि ईरान ने कोया और जेनिकान में जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल और ड्रोन से और स्कैडों और मुलहका पनाहगुजीन कैंपों को निशाना बनाया। ईरान के नीम फौजी पासदारा ने इनकलाब की वेबसाइट ने पीर को शिमाली इराक में अलहदगी पसंद और दहशतगर्द ग्रुपों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के नए सिलसिले की तस्दीक की है। अमरीका ने ताजतरीन ईरानी हमलों की मजम्मत की है। तुर्की की वजारत दिफा ने इतवार को कहा कि उसने शाम और इराक के शिमाली इलाकों पर फजाई हमले शुरू किए हैं, जहां वजारत इन कुर्द ग्रुपों को निशाना बना रही है जो उसके ख्याल में इस्तंबुल में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले हमले के जिम्मेदार हैं। वजारत ने कहा कि कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी और सीरियन पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स के ठिकाने उन हमलों का हदफ थे। वस्ती इस्तंबुल में गुज़श्ता हफ्ते होने वाले एक बम धमाके में 6 अफराद हलाक और 80 से ज़ायद जख्मी हो गए थे। तुर्की PKK और YPG को इस हमले का जिम्मेदार ठहराता है, तहम दोनों ग्रुपों ने इन इल्जामात की तर्दीद की है। दहशतगर्द ग्रुप दाइश के खिलाफ जंग में वॉशिंगटन YPG की हिमायत करता है। जौहरी तवानाई के बैन अल-अक़वामी इदारे या IAEA ने कहा है कि उसने पीर को यूक्रेन के ज़ापोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट का मुआयना करने का मंसूबा बनाया है। इस इलाके में दो दिन की गोलाबारी के बाद मुमकिन तबाही के खदशात की तशदीद हुई है। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफाइल ग्रोसी ने कहा कि यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब हमलों के ताज़ा तरीन सिलसिले में IAEA के मुताबिक इतवार के रोज़ मुतअद्दिद धमाके हुए। अगरचे प्लांट के कलीदी तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजती निज़ाम पर बराह रास्त कोई असर नहीं पड़ा, ताहम गोलाबारी खतरनाक हद तक प्लांट के करीब हुई। उनका कहना था कि जो कोई भी ज़ापोरिज़्हिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर गोलाबारी कर रहा है वो बहुत से लोगों की जानों के लिए बड़ा खतरा मोल ले रहा है। क्रेमलिन के तर्जुमान ने पीर को सहाफियों को बताया कि दीगर ममालिक को इस मकाम पर हमलों को ख़त्म करने में मदद के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को कहा कि रूस ने जंग के आगाज से अब तक यूक्रेन में 4,700 से ज़्यादा मिज़ाइल ताके हैं। अमरीकी टेलीविज़न CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने कहा कि मुकम्मल पैमाने पर जंग को 270 रोज़ हो गए हैं और रूस ने 4,700 से ज़्यादा मिज़ाइल इस्तेमाल किए हैं। वो लाफ्रांको फौनी बैन अल-अक़वामी तंजीम के अराकीन से खिताब कर रहे थे। दुनियाई फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला इतवार को कतर के दारुलहुकूमत दोहा के अल-बैत स्टेडियम में सजा। फीफा वर्ल्ड कप सन 2022 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब को कतर समेत अमरीकी, कोरियन और दीगर मारूफ फनकारों ने अपनी अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद लगा दिए। स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा भी किया गया। इतवार को ही टूर्नामेंट का आगाज मेज़बान कतर और एक्वाडोर के दरमियान मैच से हुआ। एक्वाडोर ने कतर को 0 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। इस तरह अब तक होने वाले फुटबॉल के आलमी मुकाबलों में कतर वो पहला मुल्क बन गया है जो मेज़बान होकर भी अपना पहला मैच हार गया है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों और दुआओं का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपने इस सिलसिले को जारी रखिएगा। نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.